जया यशोदा नंदना जया ब्रज जन रंजना यशोदा जया यशोदा नंदना जया ब्रज जन रंजना यशोदा जया यमुना तीरा बन जा जया कुंज जया यमुना तीरा बन चारी जया कुंज बिहारी जय हो जय हो जय राधा माधव जय कुंज राधा जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जया गिरिवर जय सुदनंदन जय ब्रज जन ब्रज जन रंजन जया यमुना तीरा बन जारी जया कुंज बिहारी जया यमुना तीरा बन चारी जया कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जया कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा
करें जय ओम विष्णु महान परम हंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधीर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्रीराधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेम नंदी All glories to Supreme Devotees, all glories to Supreme Devotees, all glories to Supreme Devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज विशेष दिन है। आप लोग जानते हैं कौन बताएंगे आज क्या है विशेष दिन? आज विशेष दिन क्या है? श्री वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। आज बहुत ही पवित्र दिन है तो उनके विषय में हम सुनेंगे। आज उनके गुणगान को सुनेंगे हम लोग। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए वृंदावन दास ठाकुर कौन है। वृंदावन दास ठाकुर के बारे में गौर गलोदेश दीपिका में लिखा हुआ है। वेद व्यासो या एवासीत दासो वृंदावनोधुना सखा यह कुसुमा पीड़ा कारितस्तम समाविशत। द्वापर युग में जो वेद व्यास थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, तो वही वेद व्यास वृंदावन दास ठाकुर के नाम से प्रकट हुए कलयुग में, जिन्होंने श्री चैतन्य का गुणगान लिखा है चैतन्य भागवत। तो श्रीमद् भागवत में वेद व्यास ने श्री कृष्ण का चरित्र लिखा है, तो वही वेद व्यास वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए कलयुग में और श्री चैतन्य का चरित्र लिखा है चैतन्य भागवत में। तो चैतन्य भागवत के रचनाकार हैं वृंदावन दास ठाकुर। ये जलधर पंडित थे, जलधर नाम के एक पंडित थे, उनके पांच पुत्र हुए, जिनमें से एक है श्रीवास। श्रीवास पंडित उनके पुत्र हैं। किसके? जलधर पंडित के पुत्र हैं श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित से बड़े भाई थे श्री राम पंडित, श्री नलिन पंडित थे। तो श्री नलिन पंडित की एक पुत्री थी जिसका नाम था नारायणी। तो श्री नलिन पंडित ने जब शरीर छोड़ दिया तो उनकी जो पत्नी थी और पुत्री नारायणी, ये श्रीवास पंडित के साथ रहते थे। श्रीवास पंडित ने पाला पोसा अपनी भतीजी को, नारायणी को। तो इसी नारायणी के पुत्र हुए वृंदावन दास ठाकुर। इन्होंने ना तो विवाह किया और ना संन्यास लिया। ना विवाह किया तो ब्रह्मचारी, संन्यास नहीं लिया जैसे हम। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है वैसे ही हैं। उन्होंने विवाह भी नहीं किया और संन्यास भी नहीं लिया। इन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त की। नित्यानंद प्रभु ने इन्हें श्री चैतन्य चरित्र लिखने की आज्ञा दी और ऐसी शक्ति भी प्रदान की। नित्यानंद प्रभु की शक्ति से ही वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा है। इतना अद्भुत ग्रंथ है कि पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। लगभग 70 वर्ष की आयु तक ये इस पृथ्वी में रहे और चैतन्य भागवत नामक श्री चैतन्य का चरित्र लिखा है और सदा के लिए ये अमृत प्रदान करके चले गए। चैतन्य भागवत का जो अमृत है ये सदा के लिए प्रदान करके गए। इन्होंने बहुत बड़ी देन दी है इस पृथ्वी को, बहुत बड़ा दान दिया है और वो क्या है? चैतन्य भागवत। वृंदावन दास ठाकुर ने देनुड़ ग्राम में श्री श्री गौड़ताई विग्रहों की प्रतिष्ठा की। इनके अनेक शिष्यों में से श्री राम हरि नाम का एक शिष्य था जिसको श्री विग्रह की सेवा का भार सौंप करके ये वृंदावन में आ गए थे। तो इस तरह से इनके विषय में कुछ बातें मैंने बताई हैं। अब चैतन्य चरितामृत में अनेक स्थानों पर कृष्णदास कविराज वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान करते हैं। ये अंतलीला का अध्याय 20वां है। इसमें प्यार संख्या 82 से शुरू करके कृष्णदास कविराज क्या लिखते हैं सुनिए बड़े ध्यान से। कृष्णदास कविराज वृंदावन दास ठाकुर का कितना गुणगान करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद के प्रिय भक्त हैं। पहली बात, नित्यानंद प्रभु के प्रिय भक्त वृंदावन दास ठाकुर। अतएव श्री चैतन्य की लीलाओं का वर्णन करने में आदि व्यास देव हैं। आदि का मतलब सबसे पहले, इसका मतलब है कि श्री चैतन्य चरित्र का गुणगान जो भी करता है वो भी व्यास है। तो उसके बाद श्री चैतन्य का गुणगान और भी आचार्यों ने किया है, ये सब व्यास कहलाते हैं। लेकिन आदि व्यास, श्री चैतन्य चरित्र के आदि व्यास कौन है? वृंदावन दास ठाकुर, है ना। नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीलाए ते हो हैं आदि व्यास। ये बंगाली है लेकिन हिंदी से काफी मिलती जुलती है। नित्यानंद कृपा पात्र, समझे? नित्यानंद कृपा पात्र, नित्यानंद की कृपा के पात्र श्री वृंदावन दास। नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीलाए ते हो हैं आदि व्यास। चैतन्य लीला के ये आदि व्यास हैं। आदि का मतलब सबसे पहले व्यास हैं, है ना। उसके बाद कितने व्यास हुए हैं? कृष्णदास का विराज भी व्यास है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है। प्रभुपाद भी व्यास हैं, उन्होंने व्याख्या लिखी चैतन्य चरितामृत की, व्याख्या लिखी है ना, और मैं भी व्यास हूँ, मैं भी सुना रहा हूँ। इस तरह से आदि व्यास तो कौन है, सबसे पहले व्यास कौन है, वृंदावन दास ठाकुर है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर के बाद सारे लेखक जो चैतन्य के शुद्ध भक्त हैं और जिन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास किया है, व्यास सदृश माने जाने चाहिए, व्यास के समान माने जाने चाहिए। चैतन्य लीला का वर्णन करने में श्री वृंदावन दास ठाकुर आदि व्यास हैं, आदि व्यास हैं, और अन्य सारे भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का वर्णन करके उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं वे भी व्यास देव कहलाए जाने चाहिए। प्रमाणित गुरु भी व्यास का प्रतिनिधि होने के कारण व्यास कहलाता है, ऐसे गुरु के जन्मदिन की पूजा करना व्यास पूजा कहलाती है। आगे कृष्णदास कबीरदास कहते हैं यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर के पास चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का भरा पूरा भंडार था, किंतु उन्होंने ज्यादा से ज्यादा छोड़ा है और थोड़ा ही वर्णन किया है। चैतन्य भागवत में जो उन्होंने वर्णन किया है चैतन्य लीला का, वो बहुत थोड़ा वर्णन किया है, वो तो बहुत ज्यादा जानते थे। क्यों थोड़ा वर्णन किया, क्योंकि उन दिनों किताबों की छपाई नहीं होती थी, उन दिनों हाथ से ग्रंथ लिखे जाते थे है ना। अब समझो अगर इतनी मोटी किताब अगर हाथ से लिखी जाए हैं तो इतना बड़ा हो जाएगा वो, आप समझे, उस समय लूज पेपर होते थे और हाथ से लिखे जाते, हाथ से लिखे जाएंगे तो कितने बड़े अक्षर होंगे, कलम होती थी, पेन भी नहीं था, पतला जो है पेन भी उस समय नहीं मिलता था, कलम होती थी, मोटे मोटे अक्षर लिखे जाते थे है ना। तो सोचिए ये अब इतनी मोटी किताब अगर लिखेंगे हाँ तो कितना हो जाएगा, इतना बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, 20 किलो का ग्रंथ हो जाएगा हाँ, और उसको रखने में भी बहुत दिक्कत है, कपड़े में बांध करके रखना पड़ता है। इसलिए जो लेखक होते थे उनको ये चिंता होती थी ग्रंथ बड़ा ना हो जाए, अगर ग्रंथ बड़ा हो जाएगा तो बहुत भारी होगा, अभी तो इतना बड़ा ग्रंथ भी है इतना हल्का है हाँ, मैं ऐसे उठा सकता हूँ इतना बड़ा ग्रंथ, हाथ से लिखें अभी भी अगर पेन से भी आप लिखेंगे तो भी कहो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा। उस समय उन दोनों तो पेन भी नहीं होता था, कलम होती थी और स्याही होती थी, स्याही कलम से लिखेंगे तो और मोटा होगा है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत जो लिखा है वो बहुत थोड़ा ही लिखा है, श्री चैतन्य चरित वो तो उनका तो बहुत ज्ञान था है? तारे आगे यद्यपि सब लीला रे भंडार तथापि अल्प वर्णिया छाड़ी लेने आर। मैंने जिस अंश का वर्णन किया है, कृष्णदास कबीरदास कहते हैं चैतन्य चरितामृत में मैंने जो हिस्सा लिखा है लीलाओं का वो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा छोड़ दिया गया था, तो वो मैंने लिखा है चैतन्य चरितामृत, किंतु उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन न करने पर भी हमें एक सारांश प्रदान किया है। कृष्णदास कबीरदास कहते हैं कि उसका भी सारांश उन्होंने दिया है वृंदावन दास ठाकुर ने, तो मैंने कुछ लीलाएं जो लिखी हैं तो वो भी वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में कुछ संकेत दे दिए, उनकी उन लीलाओं के भी संकेत दे दिए हैं। जे किछु वर्णि लो से संक्षेप कारिया लिखी देना पारे तब राखे आछे लिखिया। उन्होंने चैतन्य भागवत नामक अपनी पुस्तक में अनेक स्थानों पर इन लीलाओं का वर्णन किया है, मैं अपने पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पुस्तक को सुने क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कबीरदास कहते हैं कि मेरे पाठक जो चैतन्य चरितामृत पढ़े हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पुस्तक को जरूर सुनो। किस पुस्तक को, चैतन्य भागवत को जरूर सुनो क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रमाण वही है। चैतन्य मंगल लेते हो लिखिया छे स्थाने स्थाने सही वचन सुन सही परम है प्रमाणे। मैंने बहुत ही संक्षेप में लीलाओं का वर्णन किया है क्योंकि उनका पूरी तरह से वर्णन कर पाना मेरे लिए असंभव है, किंतु भविष्य में वेद व्यास उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। कौन करें? कृष्णदास कविराज करें। संक्षेप कही लूं विस्तार ना जाए कथा ने, विस्तारी या वेद व्यासकारी भे वर्णने। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अनेक स्थानों पर ये सत्य लिखा है कि भविष्य में व्यास देव इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। चैतन्य मंगल यहाँ लिखिया चे स्थान स्थाने, सत्य कहे नागे व्यास कारी भे वर्णने। वृंदावन दास तात्पर्य पूर्वक लिखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं शेष खंडे चैतन्य आनंद विलास विस्तार या वर्णते आछेन वेद व्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाओं का वर्णन भविष्य में व्यास देव द्वारा किया जाएगा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये कथन ये सूचित करते हैं कि भविष्य में व्यास देव के अन्य प्रतिनिधि भगवान चैतन्य की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। तात्पर्य ये कि गुरु शिष्य परंपरा में कोई शुद्ध भक्त जो श्री चैतन्य की लीलाओं का वर्णन करता है वो व्यास देव का प्रतिनिधि समझा जाता है। श्री चैतन्य की अमृतमय लीलाओं का सागर क्षीर सागर के समान है। क्या समझे? श्री चैतन्य की लीलाओं का एक समुद्र है। श्री चैतन्य की लीलाएं कितनी है? एक समुद्र के बराबर इतना है। और वो समुद्र कौन सा समुद्र है? ये समुद्र नहीं, खारे पानी का समुद्र नहीं जो हमारे सामने है, ये समुद्र नहीं। कौन सा समुद्र है? क्षीर सागर। क्षीर सागर के समान है। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी तृष्णा के अनुसार अपना पात्र भरा और समुद्र से पिया। वृंदावन दास ठाकुर ने अपना पात्र भरा क्षीर सागर से और उसको पिया है। चैतन्य लीला मृत सिंधु दुग्धा देश सामान, तृष्णानुरूप झारी भारी ते हो कैला पान। वृंदावन दास ठाकुर ने जो दूध है उच्छिष्ट रूप में मेरे लिए छोड़ा है। कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं कि चैतन्य चरिता में जो मैंने लिखा है तो उन्होंने कुछ छोड़ दिया, उसमें से क्षीर सागर से उन्होंने अपना बर्तन भरा और पिया था। जो पिया था यानी वो वर्णन किया उन्होंने चैतन्य भागवत के रूप में, तो वो पिया है उन्होंने। उसमें से जो छोड़ दिया, जो नहीं पिया छोड़ दिया, वो मैंने पिया है। माना मैंने लिखा चैतन्य चरितामृत तो मैंने पिया। कोई लिखता है भगवान का गुणगान तो वो उसको पी रहा है। तो चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर ने पिया तो समुद्र से, चैतन्य चरितामृत के समुद्र से उन्होंने अपना बर्तन भरा वृंदावन दास ठाकुर ने, और उससे दूध भर लिया। तो कितना दूध? थोड़ा सा है। तो चैतन्य भागवत भी जो है बहुत थोड़ा ही है। चैतन्य चरित्र का समुद्र इतना बड़ा समुद्र है श्री चैतन्य चरित्र का। वृंदावन दास ठाकुर ने एक बर्तन ले लिया उसमें से, और वो चैतन्य भागवत लिखा, लेकिन उसमें से कुछ छोड़ दिया, उसको मैंने पिया है, यानी मैंने लिखा चैतन्य चरितामृत, तो वो क्या है, उससे मेरा पेट भर गया, उससे मेरा पेट भर गया। कुछ उन्होंने बूंदें छोड़ दी थी तो उनसे मेरा पेट भर गया। जैसे कोई चींटी होती है, एक बूंद पानी में तो उसका कितने दिन का काम चल जाएगा कि नहीं? चींटी के लिए एक बूंद पानी कई दिनों तक चलेगा। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर की तुलना में मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो उन्होंने कुछ बूंदें छोड़ दी थी उस दूध की, तो उसको मैंने पिया तो मेरा पेट भर गया उसी में ही है। मेरा कोई बर्तन नहीं है, जैसे चींटी का अपना कोई बर्तन थोड़ी होता है, कहीं बूंद पड़ी है तो उसी से उसका कई दिन का काम चल जाता है। तो वो अब मेरी तृष्णा पूरी तरह से बुझ गई उसी में ही। तारे झारे से सामृत है किछु मोरे दीला, तते के भारी लपेट तृष्णा मोर गेला। तो इस तरह से कुछ है महिमा वृंदावन दास ठाकुर की बताई कृष्णदास कविराज ने। अब कृष्णदास कविराज आदि लीला के आठवें अध्याय में कुछ बातें बताते हैं वृंदावन दास ठाकुर के बारे में।
सुनिए बड़े ध्यान से अरे मूर्खो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं, अरे मूर्खो श्री चैतन्य भागवत तो पढ़ो, इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य की सारी महिमा को समझ पाओगे। हम लोगों को कह रहे हैं मूर्खो, अरे मूर्खो चैतन्य भागवत तो पढ़ो, इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य की सारी महिमा को समझ पाओगे। ओरे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी वे सकल। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत जो लिखा है उसका पहले नाम चैतन्य मंगल था, बाद में लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल के नाम से दूसरी पुस्तक लिख दी, तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम बदल दिया, अब चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में चैतन्य के जीवन का विस्तार से वर्णन दिया गया है। कृष्णदास कविराज ने पहले हमें सूचित कर दिया कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो बातें नहीं लिखी हैं उन्हीं का वर्णन अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में किया है। कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य भागवत को मान्यता देना इसका सूचक है कि वे गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। दिव्य साहित्य का लेखक कभी भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं, सुनिए ध्यान से, जिस तरह व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन किया है उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य की लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, बिल्कुल सरल है, कृष्ण लीला भागवते है ना, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला रे व्यास वृंदावन दास। तो कृष्ण लीला का भागवत में वर्णन किया वेद व्यास ने और चैतन्य लीला के व्यास है वृंदावन दास। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला रे व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत की रचना की जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल जहां रे श्रवणे नाश सर्व अमंगल। क्या समझे, वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल जहां रे श्रवणे नाश सर्व अमंगल। श्री चैतन्य भागवत को पढ़ करके श्री चैतन्य की और नित्यानंद की पूरी महिमा समझ में आ जाती है और कृष्ण की भक्ति के चरम बिंदु तक पहुंचा जा सकता है। क्या समझे, कृष्ण भक्ति के चरम बिंदु तक पहुंच सकते हैं किससे, चैतन्य भागवत के द्वारा। चैतन्य नेताय रे जाते जानी ये महिमा जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रह सीमा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि भक्ति पूर्ण सेवा को समझने के लिए श्रीमद् भागवत प्रामाणिक ग्रंथ है किंतु अत्यंत विस्तृत होने के कारण थोड़े ही लोग इसके भावार्थ को समझ सकते हैं। ये इतना विस्तृत ग्रंथ है कि इसके एक श्लोक की भी ठीक से व्याख्या करने पर 3 महीनों में भी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति के लिए वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा चैतन्य भागवत को पढ़ना अत्यंत सहायक है क्योंकि इस तरह से भक्ति और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को ठीक से समझा जा सकता है। आप चैतन्य भागवत से आसानी से समझ लेंगे। श्रीमद् भागवत को ठीक से ना समझने के कारण लोग कृष्ण तत्व के विषय में भ्रमित होते हैं किंतु वृंदावन दास ठाकुर की पुस्तक पढ़कर मनुष्य इस विज्ञान को सरलता से समझ सकता। आगे कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में श्रीमद् भागवत से प्रामाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के सार प्रस्तुत किए हैं। भागवत जते भक्ति सिद्धांत रसार लिखिया छिया जाने करिया उद्धार। यदि बड़े से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य भागवत सुने, क्या समझे, सुन रहे नहीं सुन रहे, यदि बड़े से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य भागवत सुने क्या समझे, यदि बड़े से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य भागवत सुने तो वो तुरंत महान भक्त बन जाता है। हरि बोल। चैतन्य मंगल सुने जदि पाखंडी जवन से महावैष्णव हाय तत् क्षण। चैतन्य मंगल सुने जदि पाखंडी जवन से महावैष्णव हाय तत् क्षण। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से श्री चैतन्य स्वयं बोल रहे हैं। चैतन्य भागवत इतना दिव्य ग्रंथ है कि जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि श्री चैतन्य स्वयं बोल रहे हैं, कोई मनुष्य ऐसा ग्रंथ नहीं लिख सकता। मानुष्य राची तेनारे ऐसे ग्रंथ है धन्य वृंदावन है दास है मुखे वक्ता श्री चैतन्य। सुनिए ध्यान से क्या शब्द है। मानुष्य राची तेनारे, मनुष्य रची तेनारे ऐसे ग्रंथ है धन्य। धन्य माने दिव्य, ऐसे दिव्य ग्रंथ मनुष्य रचिते नारे मतलब मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास के मुख में बोलने वाले श्री चैतन्य वक्ता है। मानुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ है धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तात्पर्य में प्रबल हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कुछ वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा वो वास्तव में श्री चैतन्य की वाणी थी, उन्होंने तो उसको केवल दोहराया है। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतितों का उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता है, सभी पतितों का उद्धार करने के लिए। एक या दो नहीं, नींद आ रही है? एक या दो पतितों के लिए नहीं, सभी पतितों का उद्धार करने के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ कोई नहीं लिख सकता है। इसलिए मैं वृंदावन दास के चरण कमलों पर कितना प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार है ऐसे ग्रंथ कारिते हो तारीला संसार है। लेकिन सोना नहीं है तब उद्धार होगा, और सो जाओगे तो फिर खो जाओगे। जो सोता है वो खोता है, और जो जागे वो पावे, जो सोवे वो खोवे, जो जागे वो पावे, है ना? तो सोना नहीं है। नारायणी सदा श्री चैतन्य का जूठन खाया करती थी। किसके पुत्र हैं वृंदावन दास ठाकुर? नारायणी के। तो नारायणी 4 साल की थी जब, तो श्री चैतन्य का जूठन खाती थी हमेशा। वृंदावन दास ठाकुर उसी की कोख से पैदा हुए, तो इसलिए उसका जो उसकी कोशी बहुत पवित्र हो गई, क्योंकि वो क्या खाती थी? श्री चैतन्य का जूठन खाती थी। इसलिए उसकी कुक्षी से जन्मे वृंदावन दास ठाकुर, तो इसलिए वो लिख पाए। नारायण चैतन्य रे उच्छिष्ट भजन तारे गर्भ जन्मिला श्री दास वृंदावन। क्या नारायणी? नारायण चैतन्य रे उच्छिष्ट भजन, भाजन का मतलब खाने वाली, उच्छिष्ट भाजन। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तारे गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, कवि कर्णपूर्ण द्वारा लिखित गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि चैतन्य के पार्षद कौन कौन थे, उनके पूर्व भी क्या थे। उसके 43वें श्लोक में नारायणी के विषय में ये बात मिलती है। अंबिकाया ससायासीन नामना श्रीलिखिलिम्बिकां कृष्णोच्छिष्टं प्रभुञ्जाना सेयं नारायणी मता। जब भगवान कृष्ण शिशु थे तब अंबिका नामक स्त्री ने उन्हें पाला था, और किलिम्बिका उसकी छोटी बहन थी। तो किलिम्बिका जो छोटी बहन थी वही किलिम्बिका नारायणी के रूप में जन्मी। तो श्री चैतन्य श्री कृष्ण के भवन में जो दासी थी अंबिका, हाँ, और उसकी छोटी बहन थी किलिंबिका, तो ये दासियाँ थी। तो कृष्ण का जो है जूठन खाया करती थी, कृष्ण का जूठन खाती थी ये दासियाँ। तो वही उन दासियों में से किलिंबिका नाम की जो दासी है वही नारायणी के रूप में जन्मी है। तो इस जन्म भी श्री चैतन्य का जूठन खाती थी, उसको जूठन मिलता है, तो कृष्ण का जूठन खाती थी, हाँ, कृष्ण की लीला में उनके घर में ही रहती थी, नंद महाराज के घर में ही रहती थी किलिंबिका। और वही नारायणी के रूप में जन्मी तो श्रीवास के घर में रहती थी और श्रीवास के घर में श्री चैतन्य का जूठन पाती थी, है ना। ये किलिंबिका नारायणी थी जो श्रीवास की भतीजी थी। बाद में जब ये बड़ी हुई और उसकी शादी हो गई, उसकी कोख से श्री वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का भक्त अपनी सेवा के अनुसार विख्यात होता है। इस तरह हम श्री वृंदावन दास ठाकुर को नारायणी के पुत्र के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि उनके पैतृक वंश का कोई पता नहीं है, क्योंकि उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैकुंठ दास इनके पिता थे, वृंदावन दास ठाकुर के पिता थे वैकुंठ दास, और इनके जन्म के पहले ही उनका वैकुंठ वास हो गया। वैकुंठ दास का वैकुंठ वास हो गया जब वृंदावन दास ठाकुर का जन्म भी नहीं हुआ था, तो अपने पिता के वैकुंठ वास के बाद वृंदावन दास का जन्म हुआ। आहा, श्री चैतन्य की लीलाओं का कैसा अद्भुत वर्णन इन्होंने दिया है। तीनों लोगों में जो भी उसे सुने वो पवित्र हो जाए। तारे की अद्भुत है चैतन चरित्र वर्णन जारे श्रवण शुद्ध कैला त्रिभुवन। क्या तारे की अद्भुत है, तारे की अद्भुत है चैतन चरित्र वर्णन जारे श्रवण शुद्ध कैला त्रिभुवन। तीनों लोगों को पवित्र करता है, उसका श्रवण करने से तीनों लोग पवित्र होते हैं चैतन्य भागवत को सुनने से। अतएव मेरा सबसे आग्रह है कि श्री चैतन्य और नित्यानंद की भक्ति विधि को अपनाओ और भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करो। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद खंडिवे संसार दुख पावे प्रेमानंद। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, उसमें चैतन्य की लीलाओं का पूरी तरह विस्तार से वर्णन हुआ है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल ताते चैतन्य लीला वर्णिले सकल। उन्होंने सर्वप्रथम संक्षेप में महाप्रभु की लीलाएं दी हैं और बाद में उनका विस्तार से वर्णन किया है। सूत्रकार सब लीला कारी ग्रंथन पाछे विस्तारी अतार कैला वेवेरण। श्री चैतन्य की लीलाएं अनंत और अगाध हैं, अतः इन सब का वर्णन करने से ये ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया है। चैतन्य चंद्र लीला अनंत अपार वर्णित वर्णित ग्रंथ हैल वे हैला विस्तार। उसे इतना विस्तृत देखकर बाद में उन्हें लगा कि उनमें से कुछ का वर्णन ठीक ठीक नहीं हो पाया। वृंदावन दास ठाकुर को लगा कि बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया है। विस्तार देखी या किछु संकोच हैला मन सूत्र धृत्य कोन लीला न कैला वर्णन। उन्होंने नित्यानंद की लीलाओं का वर्णन किया किंतु चैतन्य की अंत लीलाएं अनकही रह गई। नित्यानंद प्रभु की लीला का वर्णन किया कहाँ, अंत खंड में, तो फिर श्री चैतन्य की लीलाएं छूट गई, इसलिए मैंने लिखा है। कृष्णदास कविराज कहते हैं इसलिए मैंने चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य की अंत लीलाओं का ज्यादा वर्णन किया है। नित्यानंद लीला वर्णन हैले आवेश चैतन्य रसेस लीला रहिल अवशेष। वृंदावन दास ठाकुर का आवेश, आवेश में आकर के नित्यानंद की लीलाओं का वर्णन उन्होंने ज्यादा कर दिया। तो फिर श्री चैतन्य की लीलाएं अवशेष रह गई। जितना उन्होंने श्री चैतन्य की लीला लिखनी थी वो नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाता, 20 किलो का हो जाता, फिर कोई उठाने में ही उसको बड़ा भार लगता। अंत लीला में अध्याय नहीं आदि अध्याय 11 में प्यार संगे चौवन श्रीमती नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत की रचना किया है। वृंदावन दास नारायणी रे नंदन चैतन्य मंगल ज्यो कारी ले रचन बच अच्छा है सर सरल है। वृंदावन दास नारायणी रे नंदन नारायणी के पुत्र हैं। वृंदावन दास नारायणी रे नंदन चैतन्य मंगल ज्यो कारी ले रचन वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में किस लीलाओं का वर्णन किया और श्री चैतन्य की लीलाओं के व्यास हुए वृंदावन दास। भागवत कृष्ण लीला वर्णीला वेद व्यास क्या समझे भागवते भागवत कृष्ण लीला वर्णीला वेद व्यास आया सुन भागवते यानी भागवत में कृष्ण लीला वर्णीला वेद व्यास यानी वेद व्यास ने वर्णन किया। भागवत कृष्ण लीला वर्णीला वेद व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास चैतन्य लीला के व्यास कौन है वृंदावन दास। भागवत कृष्ण लीला वर्णीला वेद व्यास चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास तात्पर्य प्रभु लिखते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास के अवतार थे और कृष्ण लीला के कुसुमापीठ नामक स्नेही गोपाल भी थे। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य भागवत के लेखक वृंदावन दास ठाकुर जो श्रीवास ठाकुर की भांजी नहीं भतीजी नारायणी के पुत्र थे वेद व्यास और गोपाल कुसुमापीठ के संयुक्त अवतार थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य भागवत के अपने भाष्य में वृंदावन दास ठाकुर का विस्तृत जीवन परिचय दिया है। अब देखिए कि चैतन्य भागवत ग्रंथ कितना है और इस बार जो गौर कथा हुई थी तो उसमें कितनी लीलाएं हुई चैतन्य भागवत को जब हम पढ़ रहे थे तो आप सुनिए। उस दिन आमल की व्रत नाम की एकादशी का पवित्र दिन था तो ये घटना दिनांक 19 मार्च 2016 की है। आज के दिवस पर ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में मुझे प्रातःकालीन प्रवचन देने का अवसर प्राप्त हुआ। चूंकि आज आमल की व्रत नामक एकादशी का दिवस था अतः मैंने पद्म पुराण के अंदर से ये बात पढ़कर सुनाई कि आज के दिवस पर श्री विष्णु के थूप से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। फिर मैंने उसी ग्रंथ से ये बात भी पढ़कर सुनाई कि जो व्यक्ति आंवले के रस से सदा अपने केस साफ करता है वो पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। ये बात तो मैंने आज प्रातःकाल के समय पर पद्म पुराण से आंवले के संबंध में पढ़कर सुनाई परंतु आज सायंकाल के समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि मैं जिस समय ऑडिटोरियम में श्री चैतन्य भागवत के अंदर से श्री गौर कथा का यथाक्रम में पाठ कर रहा था उस समय मैंने ये शब्द पढ़कर सुनाई। श्री चैतन्य देव ने जिस समय संन्यास लेने के लिए रात्रि में ही अपना घर त्याग दिया उस समय भक्तों में से एक भक्त शोक करते हुए बोला कि अब मुझे क्या पुनः ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं श्री चैतन्य के सुंदर केसों को आंवले के रस से साफ करूंगा। देखो कितना आश्चर्य उसी दिन हमने जो है आंवले के रस से बालों को साफ करने की बात बताई पद्म पुराण में है? उसी दिन जो है तो यथाक्रम में चैतन्य भागवत में ये बात निकली। ये शब्द तो मैंने उक्त ग्रंथ से यथाक्रम में पढ़कर सुनाए परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि आज प्रातःकाल के समय मैंने पद्म पुराण के अंदर से आंवले के रस से केसों को धोने की बात पढ़कर सुनाई तथा सायंकाल में चैतन्य भागवत के अंदर से यथाक्रम के पाठ में मेरी आवाज में श्री चैतन्य के केसों को आंवले के रस से धोने की बात निकली। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए प्रातःकाल में मेरे द्वारा पद्म पुराण से केसों को आंवले के रस से धोने की बात पढ़कर सुनाने और सायं के समय चैतन्य भागवत में यथाक्रम के पाठ में मेरी आवाज़ में श्री चैतन्य के केसों को आंवले के रस से धोने की बात निकलने के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अभी चैतन्य भागवत का कितना आश्चर्य है। और उसी दिन एक दूसरी लीला हुई। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। चैतन्य भागवत से यथाक्रम पाठ करते हुए मैंने ये शब्द पढ़कर सुनाए। जिस रात्रि को श्री चैतन्य संन्यास लेने वाले थे, उस रात्रि को अनेक भक्त श्री चैतन्य को माला पहना रहे थे और श्री चैतन्य की प्रसादी माला प्राप्त कर वे सभी हर्षित होकर श्री चैतन्य से विदा होते थे। ये शब्द तो मैंने उक्त ग्रंथ से पढ़कर सुनाए। कौन से ग्रंथ से पढ़कर सुनाए? चैतन्य भागवत से। परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय मेरे निकट मंच में श्री चैतन्य के एक बड़े फ्रेम के निकट रखी हुई फूलों की माला गिरकर नीचे रखे हुए श्री प्रभुपाद के फ्रेम के ऊपर इस प्रकार आ गई, मानो उस माला को किसी ने अत्यंत सावधानी पूर्वक श्री प्रभुपाद के फ्रेम के चारों तरफ पहनाया हो। हरि बोल। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैंने उक्त ग्रंथ के अंदर से श्री चैतन्य देव के द्वारा भक्तों को प्रसादी माला प्राप्त होने की बात पढ़कर सुनाई, ठीक उसी समय श्री चैतन्य के प्रेम के निकट रखी हुई माला गिरकर श्रील प्रभुपाद के प्रेम के चारों ओर इस प्रकार लिपट गई, मानो किसी ने अत्यंत सावधानी पूर्वक वो माला श्रील प्रभुपाद के प्रेम को पहनाई हो। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए मेरे द्वारा पुस्तक के अंदर से श्री चैतन्य के द्वारा भक्तों को प्रसादी माला के प्राप्त होने की बात पढ़कर सुनाने और उसी समय श्री चैतन्य के फ्रेम के निकट रखी हुई माला का गिरकर श्रील प्रभुपाद के फ्रेम के चारों ओर लपटने के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। अब देखिए लगातार कितनी लीलाएं हुई। अभी दो लीलाएं हो गई है, 19 मार्च की बात है। अब तीसरी लीला। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। चैतन्य भागवत से यथाक्रम पाठ करते हुए मैंने ये शब्द पढ़कर सुनाए। उस समय श्री चैतन्य के एक महान भक्त श्रीधर श्री चैतन्य की सेवा में एक लौकी लेकर आए। उसी समय किसी अन्य भक्त ने दूध लाकर भेंट किया। उस समय श्री चैतन्य ने अपने भक्तों के दिए हुए दूध और लौकी को प्रीतिपूर्वक स्वीकार करके अपनी माता के द्वारा खीर बनवाई और उस खीर का भोजन किया। ये बात तो मैंने पुस्तक के अंदर से यथाक्रम में पढ़कर सुनाई, परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि आज के दिवस पर कथा के अंत में श्रोताओं को खिलाने के लिए जो प्रसाद भोजन बना था उसमें एक व्यंजन लौकी का हलवा भी था। कितना आश्चर्य। चैतन्य भागवत में लिखा मिला आज के दिन कि लौकी श्रीधर ने दी और श्री चैतन्य ने उसकी खीर बना के खाई। ये बता रहे लौकी की स्वीट शाम को कभी नहीं बनी आज तक, ये उसी दिन जो है लौकी की स्वीट बनी। ये कहते आश्चर्य की घटना हुई कि जिस दिवस पर कथा के अंत में श्रोताओं को खिलाने के लिए लौकी का हलवा बना था उसी दिवस की कथा में मेरे मुख से यथाक्रम के पाठ में ये बात निकली कि श्री चैतन्य ने लौकी की खीर का भोजन किया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए प्रसाद भोजन में लौकी के हलवा के बनने और उसी दिन की कथा में श्री चैतन्य के द्वारा लौकी की खीर का भोजन करने की बात निकलने के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। देखो तीन लीलाएं हो गई, अब जो चौथी लीला देखो चैतन्य भागवत से ही जो है ये लीलाएं हो रही हैं। पहली लीला क्या थी? चैतन्य भागवत में लिखा मिला आंवले के रस से श्री चैतन्य के केशों को मैं कब धोऊंगा, जबकि आंवले की एकादशी के महात्म्य आंवले के रस की बात आई थी कि जो केशों को धोता है वो माता का स्तन नहीं पीता। पहली लीला। दूसरी लीला जब चैतन्य भागवत में मैंने पढ़ा कि श्री चैतन्य की प्रसादी माला भक्त लोग प्राप्त कर रहे थे, उसी समय श्री चैतन्य की प्रसादी माला प्रभुपाद के फ्रेम के चारों तरफ ऐसी गिरी कि लिपट गई, है ना। दूसरी और तीसरी लीला क्या हुई? लौकी का हलवा, लौकी की खीर खाई श्री चैतन्य ने और उसी दिन भक्तों को लौकी का हलवा मिला। अब चौथी लीला सुनी। चौथी लीला। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। मैंने चैतन्य भागवत से यथाक्रम में पाठ करते हुए ये शब्द पढ़कर सुनाए। जिस समय भक्तों को पता चला कि श्री चैतन्य रात्रि में ही घर छोड़कर चले गए हैं, उस समय वे शोक करते हुए कहने लगे यदि श्री चैतन्य हमें छोड़कर चले गए हैं तो हमें भी अपने घरों में आग लगाकर योगी बनकर निकल जाना चाहिए। ये समय तो मैंने पुस्तक के अंदर से पढ़कर सुनाए, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय मेरे निकट मंच पर घी का जो दीपक जल रहा था उसकी आग समीप में रखे हुए मिठाई के पैकेट में लग गई और उस पैकेट का गत्ता जलने लगा। उस समय प्रद्युम्न प्रिय प्रभु ने उस आग को बुझा दिया, परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिसमें मैंने कथा के अंदर से आग लगाने की बात पढ़कर सुनाई, ठीक उसी समय मंच में रखे हुए एक गत्ते में आग लग गई। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए मेरे द्वारा पुस्तक के अंदर से घर में आग लगाने की बात पढ़कर सुनाने और उसी समय एक गत्ते में आग लगने के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। कितना आश्चर्य! इसके बाद एक उसी दिन और लीला, अभी देखो कितनी हो गई, चार लीलाएं हो गई, अब देखो पांचवी लीला। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, ये बात तो बताई जा चुकी है कि श्री चैतन्य की प्रसादी माला किस प्रकार शिल प्रभुपाद को प्राप्त हुई, परंतु कुछ समय बाद एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि मैं जिस समय कथा के बाद रात्रि के लगभग 9:40 पर अपने कमरे की ओर आ रहा था, उस समय अनादि प्रभु ने मंदिर में स्थित शिल प्रभुपाद के अर्चा विग्रह की प्रसादी माला मुझको पहनाई। अनादि प्रभु यहाँ पर आए हैं। ये बात समझने की है कि चूंकि मंदिर 9 बजे बंद हो चुका था, अतः अनादि प्रभु को 40 मिनट तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, परंतु उन्होंने उस माला को किसी अन्य भक्त को ना देकर मुझे ही दी। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस कथा के समय श्रील प्रभुपाद को श्री चैतन्य की प्रसादी माला प्राप्त हुई, उसी कथा के अंत में मुझे श्रील प्रभुपाद की प्रसादी माला प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए श्रील प्रभुपाद को श्री चैतन्य की प्रसादी माला प्राप्त होने और मुझे श्रील प्रभुपाद की प्रसादी माला प्राप्त होने के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। कितना आश्चर्य! अच्छा, एक और लीला, ये अगले दिन की है, यानी 20 तारीख। ये सब लीलाएं 19 तारीख की थी, अब 20 तारीख को भी हमें चैतन्य भागवत सुनाई थी। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, आज के दिवस पर श्री माधवेन्द्रपुरी के 13 भाव का अत्यंत पवित्र दिवस होने के कारण मैंने ऑडिटोरियम में चैतन्य भागवत के अंदर से ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री अद्वैताचार्य जिस समय अपने गुरु श्री माधवेन्द्रपुरी के 13 भाव का उत्सव मना रहे थे, उस समय उन्होंने पूजा के लिए जितनी सामग्री जुटाई उसका अंत नहीं है, उस समय अनेक दिशाओं से अनेक प्रकार की सामग्री आने लगी। ये बात तो मैंने पुस्तक के अंदर से पढ़कर सुनाई, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय जिस मंच पर मैं कथा सुना रहा था उस मंच पर केले के गुच्छों से भरी हुई अनेक टोकरियां आने लगी। अब देखो मैं चैतन्य भागवत में पढ़ रहा हूँ और आज माधवीपुरी का 13 भाव दिवस है और अद्वैताचार्य मना रहे हैं, तो उनके पास अनेक दिशाओं से सामग्री आ रही है, उसी समय शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? केले के गुच्छों से भरी हुई अनेक टोकरियां आने लगी मंच पर। ये कहते हैं आश्चर्य की घटना हुई जिस समय मैंने माधवेन्द्रपुरी के 13 भाव दिवस पर शिला अद्वैताचार्य के स्थान पर अनेक प्रकार की सामग्रियों के आने की बात पढ़कर सुनाई, ठीक उसी समय और उसी स्थान पर केलों से भरी हुई अनेक टोकरियां आई। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए मेरे द्वारा अनेक सामग्रियों के आने की बात पढ़कर सुनाने और उसी समय केले से भरी हुई अनेक टोकरियों के आने के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत प्रसन्न था, बार बार हर्षित हुए। हरिओम। अब देखो और आश्चर्य की घटना, ये घटना 21 मार्च की है, 19 मार्च की लीला, फिर 20 मार्च की लीला, अब 21 मार्च की लीला। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई, आज के दिवस पर ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में प्रातःकालीन प्रवचन देने का अवसर मुझे मिला। चूंकि 2 दिनों के बाद श्री चैतन्य के आविर्भाव का अत्यंत पवित्र दिवस आने वाला है। अतः मैंने विचार किया कि समय भागवत के नियमित श्लोक पर प्रवचन न देकर मैं श्री चैतन्य की किसी एक लीला का पाठ करूं। उस समय मैंने विचार किया कि मैं चैतन्य भागवत के अंदर से एक ऐसी लीला का पाठ करूंगा जिसमें श्री चैतन्य का श्री नित्यानंद के साथ सर्वप्रथम मिलन हुआ था। अब मैंने जिस समय ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री नित्यानंद तथा श्री चैतन्य एक दूसरे को एक तक देखने लगे, उस समय अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय प्रातः के 8:30 होने के कारण मंदिर के सभी अर्चक विग्रहों के साथ साथ श्री गौर नेताई के अर्चक विग्रहों के भी दर्शन खुले। एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैंने ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री नित्यानंद तथा श्री चैतन्य एक दूसरे को एक तक देखने लगे, उसी समय मंदिर में श्री श्री गौरताई के अर्चक विग्रहों के दर्शन खुले। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए मेरे द्वारा ये बोलने कि श्री चैतन्य था श्री नित्यानंद एक दूसरे को एक तक देखने लगे और उसी समय श्री चैतन्य नित्यानंद के अर्चक विग्रहों के दर्शन खुलने के अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत तथा बार बार हर्षित हुए। अब एक और घटना, उसके बाद अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। आज मंदिर के ऑडिटोरियम में 5 दिनों की गौर कथा का अंतिम दिन था। अब ऑडिटोरियम में श्री चैतन्य भागवत के अंदर से पाठ करते हुए मैंने ये बात पढ़कर सुनाई, जिस समय श्री चैतन्य ने संन्यास ले लिया उस समय उनके सन्यासी रूप का पहली बार दर्शन करने के लिए इतने असंख्य मनुष्य एकत्र हो गए कि क्या मैदान तथा गाँव सब भर गए। बहुत लोगों की भीड़ होने लगी जिससे फुलिया नगर संपूर्ण भर गया। ये बात तो मैंने पुस्तक के अंदर से पढ़कर सुनाई, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय ऑडिटोरियम में बहुत भीड़ होने के कारण ऑडिटोरियम संपूर्ण भर गया। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय मैंने कथा के अंदर से ये बात पढ़कर सुनाई कि श्री चैतन्य का दर्शन करने के लिए आए हुए मनुष्यों के द्वारा फुलिया नगर संपूर्ण भर गया, ठीक उसी समय श्री चैतन्य की कथा सुनने के लिए आए हुए मनुष्यों द्वारा ऑडिटोरियम संपूर्ण भर गया। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए मेरे द्वारा श्री चैतन्य के दर्शन के लिए आए हुए मनुष्यों के द्वारा फुलिया नगर के भरने की बात पढ़कर सुनाने और उसी समय श्री चैतन्य की कथा सुनने के लिए आए हुए मनुष्यों के द्वारा ऑडिटोरियम के संपूर्ण भरने के अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो कितनी लीलाएँ, मतलब कोई अंत ही नहीं है, और भी बहुत लीलाएं हो चुकी हैं चैतन्य भागवत का जब पाठ करते हैं। हरि ओम। सो श्रील वृंदावन दास ठाकुर त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय।